Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad, presented by Swami Sri Pranavanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
भाई आप अपनी दुकान में कौन सी चीजें रखते हो जिसके ग्राहक हो और जिसका कोई ग्राहक ही ना हो वो चीज दुकानदार अपनी दुकान में चीजें रखेगा नहीं। जिसके ग्राहक ज्यादा होते हैं उसका प्रोडक्शन होता है, डिमांड प्रोडक्शन को पैदा करती है। नियम है ये, डिमांड और प्रोडक्शन ही साथ साथ चलते हैं। जिसकी डिमांड ही ना हो उसका प्रोडक्शन कैसे होगा? इसलिए डिमांड होना चाहिए। अभी डिमांड वृंदावन में किस चीज की है? वहां तो आपको राधे 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 आपको हर जगह पर मिलेगा, हर जगह पर आपको भागवत और जप करते हुए पूजा पाठ करते हुए लोग मिलेंगे आपको हर जगह पर, राधे राधे राधे। किसी को बोलो भैया भागवत चल रहा है, चलो 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 चलो, और वहां जाके फिर आप आनंद मनाओ, नाचना गाना भागवत पूजा पा। और किसी को बोलो भैया चलोगे क्या? बोले कठोपनिषद का प्रवचन। अरे भाई कठोपनिषद क्या हम नहीं सुनते? उसी डिमांड नहीं है। अब गीता सुनोगे, हमने शुरू किया था, परम पूज्य महाराज श्री की इच्छा थी प्रस्थान त्रयी का अध्याय गौड़ पाद पीठ, महाराज जी की इच्छा थी। महाराज जी बोलते थे गौड़पाद पीठ की स्थापना करो और वहां प्रस्थान त्रयी का अध्ययन होगा। तो एक और एक महात्मा थे, उन्होंने भी कोशिश की लेकिन बना नहीं। हम बनारस में पढ़ के जब आए तो महात्माओं ने आग्रह किया कि अब आप शुरू करो। तो हमारे मन में भी बड़ा भाव था कि प्रस्थान त्रयी का अध्ययन कराएंगे महात्माओं को, विद्वान बनाएंगे लोगों को। शुरू किया 40-50 विद्यार्थी थे, उसमें गोविंदानंद जी महाराज डॉक्टर स्वामी जी भी आते थे। उनका तो कौतुक था, एक उत्साह बड़ा निकले बैठ जाते। मैं भी बड़ा प्रसन्न हो गया 40-50 महात्मा और शुरू हो गया। लेकिन आश्चर्य के बाद 6 महीने के बाद केवल मैं अकेला रह गया। 6 महीने के बाद मैं अकेला बैठा रहा, मेरा एक महात्मा आया साधु, बोले महाराज अब हम दो ही रह गए हैं और मैं जा रहा हूं बाहर घूमने के लिए। अत्रैमो ग्राहका भाव। नारद जी महाराज ने कहा कि यहां ज्ञान और वैराग्य की ग्राहक नहीं है, और ग्राहक न होने के कारण ही बूढ़े रह गए। और इनको यदि युवा बनाना हो तो अब आपने को क्या करना पड़ेगा? इसके जहां ग्राहक हो वहां पहुंचना पड़ेगा। अब इसकी डिमांड कहां है? चलो हरिद्वार। इसका रहस्य यही है। आप गंगा का किनारा, ओहो हो हो, आप वहां आप जाओगे तो बस आपको ऐसे लोग मिलेंगे गंगा के किनारे बैठ के तत्व की चर्चा करने वाले। महात्मा जी कमंडल लेके बैठे हैं, भगवत गीता बगल में, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। इसीलिए सनकादियों ने कहा कि बेटा यहां आ जाओ, यहां ज्ञान की चर्चा यदि सुनना है तो कहां पहुंचो? गंगा के किनारे, यमुना के किनारे भक्ति और गंगा के किनारे ज्ञान। और आपको तप करना हो तो नर्मदा तट, आपको तपस्या करना है तो नर्मदा तट, ज्ञान पाना है तो गंगा तट, और भक्ति पाना है तो यमुना। और यही कारण है सनकादियों ने कहा हरिद्वार समीपे तू, भागवती कथा सुनो, आओ आओ। क्या बढ़ाना है समाज में? क्या बढ़ाना है? बोले ज्ञान वैराग्य। बोले आओ हरिद्वार में कथा होगी। उन्होंने कहा कि ये कथा यदि वृंदावन में करेंगे तो वहां कुछ नहीं होने वाला है, वहां तो भक्ति और मोटी हो जाएगी, उसका दुबलापन खत्म हो गया, नवयुवती हो गई, और मोटी हो जाएगी। लेकिन ज्ञान वैराग्य को यदि आपको जगाना है तो कहां जाना पड़ेगा? अरे हरिद्वार। ये शब्द बड़ा महत्वपूर्ण दिया है नारद जी ने, अत्रैमो ग्राहका भावात डिमांड। ये मांग है मांग, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा परिप्रश्ने न सेवया। ये मांग है परिप्रश्न जो है ना, ये मांग है मांग। और ये सावधान किया कि आप क्या चाहते हो, बस 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 आप क्या चाहते हो, और आप जो चाहते हो ना वो चीज आपको मिल जाती है। आपकी चाह ये आपका संकल्प, आपका कल्पतरु। आपने सुना है कल्पतरु, एक पेड़ होता है, अब आज अभी तक हमने नहीं देखा है, आप लोगों ने देखा होगा कल्पतरु नहीं होता तो कितना अच्छा होता, अपने को कुछ करना ही नहीं पड़ता, उस पेड़ के पास जा करके आप संकल्प कर लेते और आपको वो मिल जाता। लेकिन भगवान भी बहुत मजेदार, भगवान को मालूम है कि ये आदमी जाके पता नहीं क्या संकल्प करेगा। कई बार तो आदमी अपने लिए खत्म करने के संकल्प कर लेता है। आपने कभी सुना है ना, वो एक दृष्टांत आता है, सुना होगा जरूर, क्योंकि कई बार मेरे को सोचना पड़ता है कि आपने क्या नहीं सुना आपने क्या नहीं सुना होगा, मैं खोजता हूं, क्योंकि आप इतने पुराने सत्संगी हैं, करीब करीब सारी बातें सुन चुके होते हैं। एक आदमी था थका हारा और एक पेड़ के नीचे गया, थका हारा था, सोचा आहा हा कितना अच्छा होता, यहां कुछ बिछाने को मिल जाता, सचमुच बिछोना आ गया, ओहो हो बैठ गया वहां। फिर सोचने लगा कि क्या कितना अच्छा होता भोजन मिल जाए, भोजन आ गया, भोजन किया उसने, ओहो बोले कितना अच्छा होता अमुक चीज आ जाती, आ गई। वो डर गया, वो सोचने लगा कि मैं चाहता हूं और वो चीज आ जाती है, यहां कोई भूत तो नहीं है वो सचमुच भूत आ गया, और वो सोचने लगा अरे राम राम ये तो आ गया, अब ये मेरे को खाने जाए, और वो खा गया। इसलिए भगवान ने जानबूझकर कल्पतरु स्वर्ग भेजा है, क्योंकि स्वर्ग में इतने नासमझ लोग नहीं है, वो संकल्प भी करेंगे तो सोच समझ के करेंगे। और सबसे बड़ा जो कल्पतरु है वो हमारा मन है, संकल्प में जो कल्प है ना वही आपके कल्पतरु में कल्प है, कल्पितम राति ददाति इति कल्पतरु। और संकल्प जो है ना ये मन का धर्म है, संकल्पितम, जो आपका जो मन है ना वो संकल्प विकल्पात्मक, आप जो चाहते हैं ना वो चीज आपको मिलना शुरू हो जाती है। आप चाहना तो शुरू करो, मजे की बात हम चाहना ही नहीं शुरू करते हैं, हम चाहना शुरू कर दे और वो चीज ना मिले, ये क्या संभव है? सचमुच संभव नहीं, वो चीज मिलना शुरू हो जाती है, नहीं मिलना असंभव। ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूं, ये बात श्रुति बोल रही है कि आप चाहना तो शुरू करो, आप क्या चाहते हो और जैसे आप चाहते हैं ना वैसे वो चीज मिलनी शुरू हो जाती है, लेकिन वो चाहना जरूर होना चाहिए। या यम एष वृणुते, ये वृणुते का अर्थ होता है कि आप आत्मा को चाहते हैं कि आप अनात्मा को चाहते हैं। आप आत्मा को यदि चाहते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपके सामने आत्मा ना आए, प्रकट हो जाए। आत्मा हमारे सामने प्रकट हो जाएगी कब? लेकिन आत्मा को मालूम होना चाहिए कि ये व्यक्ति मेरे को चाहता है, और यदि आत्मा को मालूम हो कि ये व्यक्ति मेरे को नहीं चाहता है, बोले नहीं, तो आत्मा उसको प्राप्त नहीं होती। इसलिए ये बहुत बहुत अंतरंग साधना की बात बता दी इन्होंने, बहुत अंतरंग साधना की बात। यम एष वृणुते, आश्चर्य की बात यह है कि जो चाहता है ना चाहने के साथ प्रयत्न शुरू हो जाता है। आप चाहते हैं ये मालूम कैसे पड़े? चाह के साथ प्रयत्न शुरू हो जाए तब समझ लीजिए कि आप चाहते हैं, और चाहते हैं लेकिन कुछ प्रयत्न नहीं शुरू करते तो आप चाहते हैं कि नहीं? क्या चाहता, उस चाहने का क्या अर्थ है? कि चाह आपके अंदर प्रयत्न पैदा न करे, व्याकुलता पैदा न करे, वेदना पैदा न करे, तो उस चाह का अर्थ क्या है? आपके अंदर चाह पैदा हो, आप व्याकुल हो उठे, उसको पाने के लिए आप साधन मार्ग के लिए, श्रवण के लिए आप दौड़ लगाओ, दौड़। ट्रेन के लिए दौड़ लगाते कि नहीं? आपको 5:02 की ट्रेन पकड़ना है, कितने मिनट की? 2 मिनट। 5:25 की ट्रेन पकड़ना है, 2:45 की ट्रेन पकड़ना है, तो आप क्या करते फिर? ओहो, 2:45 की ट्रेन, ये सेकंड की बात है। और आदमी दौड़ता है, उसमें आदमी मालूम पड़ता है कि नहीं आदमी को? जिस समय वो ट्रेन पकड़ने के लिए जाए और उस समय उसके घर का आदमी सामने आए तो आदमी को मालूम नहीं पड़ता है। उसकी पत्नी भी टकरा जाए ना तो टकरा देगा वो, लेकिन उसको ट्रेन पकड़ना है, उसको नहीं दिखाई देगा। क्यों भैया? ये ट्रेन गई तो मुश्किल है, वो ऑफिस में लेट होगा, फिर आपको दंड मिलेगा और फिर ऑफिस छूटेगा। ये बॉम्बे है, इसी को तो बोलते हैं यम एश वृणु थे न लगते। ट्रेन आपके लिए नहीं रुकने वाली है, आपको ही जाना पड़ेगा वहां, उसी को मिलती है ट्रेन, और नहीं तो वो चली गई, वो उसी को मिलती है जो इस प्रकार उसको प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करता है, अपने को झोंक देता है। ऐसे आत्मज्ञान किसको मिलता है? तो कहते उस आत्मा को पाने के लिए जो प्रयत्नशील है। हाँ, प्रयत्नशील है। इसलिए आप यति सुनते हैं कि नहीं? यति 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 जो शब्द है ये ऐसे सन्यासी के लिए है, लेकिन वास्तविकता ये है कि यति शब्द ये अत्यधिक साधना का द्योतक शब्द है। यत्नशील, उसको यति बोलते हैं, और आप भी यत्नशील हैं तो आप यति हैं। आप उस तत्व को जानने के लिए प्रयत्नशील हैं, व्याकुल हैं, आप यति हैं। यही है यम, यति ही, प्रयत्नशील साधक वृणुते उसका वर्ण कर लेता है, पाना चाहता है, उसके अंदर जिज्ञासा पैदा हो गई है, तेन लभ्य, उसके द्वारा वो तत्व प्राप्त कर लिया जाता है, वो तत्व आत्मोपलब्धि उस साधक को हो जाती है। तस्य एष आत्मा विवृणुते तनुस्वा, ऐसे तो आत्मा अज्ञान से ढकी हुई है, लेकिन आत्मा निरावरण किनके सामने होती है? बोले जो आत्मा का वर्ण कर लेता है। ऐसा ये थोड़ा साहित्यिक भाषा में बोल रहे हैं, साहित्यिक भाषा में, जैसे वधु जो है ना, वधु, उन्होंने पर्दा करके अपने आप को छिपा के रखा है, वो आवरण में, आवरण में, और वो अपना आवरण कहां हटाती है? वो घूंघट नारायण वहां हटाती है जहां सामने वाला उसका वरण कर लेता है। और यदि वरण किया हुआ नहीं है तो वो अपना पर्दा हटाएगी कि नहीं? हटाने की बात वो तो और ढक लेगी। इसलिए कहते यम वृणुते, जो आत्मा का वरण कर लेता है, तनु स्वाम, यहां बहुत गहरे शब्द का प्रयोग किया, तनु स्वाम तनुम, अपना जो शरीर है, अपना शरीर वो उस साधक के सामने प्रकट कर देता है। और यहां तनुस्वाम करते सच्चिदानंद अखंड एक रस, जो आत्मा का स्वगत सजाति विजाति भेद से रहित जो तत्व है, शरीर से परे व्यापक महांत विभुम, वो तत्व आत्मा उस साधक के सामने प्रकट कर देता है। और नहीं तो फिर अपने आप को छिपा के रखता है, वो प्रकट नहीं होने देता है। अब यहां पर एक बहुत गहरे अर्थ का संकेत किया है, वो स्वयं आत्म तत्व है और स्वयं से आवृत है और स्वयं स्वयं के लिए वो आत्म तत्व प्रकट करता है जो स्वयं को ही स्वयं का वरण कर लेता है। स्वयं के सामने स्वयं आत्म तत्व स्वयं को प्रकट कर देता है। कब? जब स्वयं अपने स्व का ही वो वरण कर लेता है। हम वरण तो कर लेते हैं लेकिन अपना वरण कर लेते कि दूसरे का वरण कर लेते हैं? हम हमेशा दूसरे का वरण कर लेते हैं, हम अपने वरण से वंचित हो जाते हैं। परम पूज्य महाराज श्री ने यहां एक बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया, मैं आपको बता दूं, आपको बहुत सारा ज्ञान इस दृष्टांत में होगा और ये दृष्टांत आप सुन चुके हैं। पंचदशी में एक उदाहरण आया है दशमस्तमसी का, बड़ा सुंदर उदाहरण है। वेदांत को समझने के लिए उससे ज्यादा अच्छा उदाहरण कोई नहीं है। अपने आप को समझने के लिए कुछ 10 लोग पिकनिक मनाने के लिए कहीं गए गंगा पार। ये उदाहरण ऐसा लगता है कि गंगा के किनारे बैठ के लिखा गया हो, क्योंकि हमने देखा कि गंगा के किनारे रहने वाले लोग अपना नाव उठा के उस पार चले जाते हैं और वहां भांग भी खूब घोटते हैं। भांग गंगा के किनारे बड़े बड़े पत्थर और वो गंगा जी के मलाहा और पंडित लोग घूमने वाले सभी लोग नहीं, थोड़ा आनंद मना ले गो घोटने को भांग, बम बम भोले बाबा को थोड़ा भोग लगाते हैं, खाए और चले गए गंगा जी सैर गंगा विहार। फिर जाके खूब नहाए धोए उधर ही निपट लेते, उधर निपट निपट कर गया 10 लोग निकले और उन्होंने भांग खाई, मिठाई भी साथ ली उन्होंने और भांग खा के नाव में बैठे उस किनारे गए, उधर आनंद मनाया, बच्चे बच्चे रहे 10 और पहले से ही भांग और ऊपर से उन्होंने मिठाई खाई। और कदे भांग में जो मिठाई खा जाती है तो वो थोड़ा और नशा बढ़ा देती है, जैसे नशा बढ़ने लगी तो आपस में उन 10 ने कहा कि भैया हम लोग आए हैं बहुत दूर, देखो पहले ना गिन लो हम लोग है कितने। अब वो तो मालूम था कि हम 10 हैं, फिर भी वो नशा काम करने लगे, गिना 1 2 3 4 और 10 हैं पक्का भैया, हमने पक्का 10 हैं। और थोड़ा सा आगे बढ़े आप, फिर वहां घूमना नाचना गाना उनका सब हुआ। अचानक एक व्यक्ति को लगा कि भैया हम लोग 10 आए हैं ना, बराबर है कि नहीं, नापो गिनो। अब वो नशा में इतने नारायण गहरे डूबे हुए एक आदमी ने नापा, उन्होंने 9 को नापा, अपने को छोड़ के नापा और उन्होंने कहा कि भैया 9 है, हम आए थे 10 और इस समय 9 है और एक जो 10वां है दशमो नास्ति और दशमो ममार, बोले 10वां नहीं है, न भाती दशमो, न भाती दशमो, न नास्ति और दशमो ममार, 10वां दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए 10वां नहीं है और 10वां मर गया है। अब हर आदमी ने गिना लेकिन अपने को छोड़ के गिना, और ये दुर्दशा ये केवल उन 10ों के साथ नहीं, हमारे साथ भी यही है, हम भी गिनते हैं लेकिन अपने को छोड़ के, हम सबको देखते हैं लेकिन अपने को छोड़ के, हमें सारी दुनिया दिखाई देती है लेकिन अपने को छोड़ के। अब वो सब लोग रोने लगे, गहरी भांग की नशा, अब वो रोने लगे, दशमो नास्ति दशमो ममार, मर गया वो, 10वां दिखाई नहीं दे रहा है, वो नहीं है, वो मर गया, रोने लगे वो 10ों बैठ के, और वो 10ों रो रहे थे, वो छाती में लपट लपट के रो रहे थे, भैया वो ऐसे नहीं, उठ रहे थे, गिर रहे थे, घुटने भी फूट गए ऐसा लिखा हुआ अब क्या करें, अब 10वां नास्ति, अब क्या जवाब दे, लोग पूछेंगे भैया 10वां नहीं है, वापस जाए तो हम क्या जवाब दें। एक किसान था, उसने देखा कि ये 10 लोग यहां आए, पिकनिक मनाए, आनंद मनाए, सब कुछ हुआ, लेकिन अचानक इनको क्या हुआ, ये रो रहे हैं। किसान दौड़ते हुए गया, जाकर के उन्होंने पूछा, भैया क्या हो गया, तुम लोग क्यों रो रहे हो? बड़ा समझदार था किसान, और प्रेमपुरी सत्संग मंडल का रहा होगा, वो प्रेमपुरी आश्रम का जरूर रहा होगा, वो पढ़ा लिखा था, वो उसको वेदांत का बोध था। उन्होंने देखा 10 लोग हैं, रो रहे हैं। बोले क्यों रो रहे हो? वो 10 लोग दौड़ते हुए आए और उन्होंने कहा कि हमारी मदद कीजिए, आप हमारी मदद कीजिए, हम लोग 10 लोग आए थे पिकनिक मनाने के लिए, और हमारे बीच में से एक आदमी खो गया, मर गया, पता नहीं क्या होगा। किसान ने फिर नापा, ओहो 10 हैं, ये बोल रहे हैं कि 9 और एक खो गया। किसान समझ गया कि भांग के नशा में है, और इस समय में समझा भी दूं तो समझ में आने वाला नहीं है। किसान ने कहा, जाओ तुम लोग गंगा स्नान करके आओ, गंगा स्नान, थोड़ा ठंडा ठंडा दिमाग पर पानी गिरेगा, नशा थोड़ी कम होगी, किसान का मंतव्य था। किसान ने कहा, जाओ स्नान करके आओ, उसके बाद हम तुमको दशवे को मिला देंगे। दशमो अस्ति, दशमो अस्ति नाम मार, दशवा है वो मरा नहीं है। और जैसे उन्होंने सुना दशमो अस्ति, ओहो हो इतने प्रसन्न हुए, नाचने लगे, दशवा है, दशवा है, दशवा है। बोले बताइए कहाँ है? बोले गंगा स्नान करके आओ पहले, उसके बाद हम तुमको दशवे से मिला देंगे। बड़े प्रसन्न हो गए, वो दशवे को मिलने के लिए व्याकुल थे, और मालूम पड़ गया था कि दशवा है, मरा नहीं है, खुश हो गए हो और वो गंगा स्नान करके आए, और तब तक वो नशा कम हो गई थी। किसान ने, महात्मा लोग तो सुनाते, जो विरक्त महात्मा है सुनाते, किसान के हाथ में चाबुक था लाइन में खड़ा कर दिया उन्होंने, लाइन में बोले 1 2 3 4 और जो दशवा आया, बोले दशमस त्वमसी, तुम दशवा हो। ओहो वो बड़ा प्रसन्न हो गया, दशमो अहम, उसको ज्ञान हो गया मैं दशवा हूं। और प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञान कराया उन्होंने, दशमस त्वमसी, तुम दशवे, तुम दशवे, तुम, और सारे दशवे हैं, और सबको ज्ञान हुआ, दशमो अहम, मैं दशवा हूं। ऐसा माने दशवे को ही दशवा हूं ये ज्ञान हो गया। ये जो दशमो अहम में जो ज्ञान हुआ, जो दशवे थे उसी को हुआ, दशवे को ही दशमो अहम ज्ञान हुआ, क्योंकि बीच में भांग की नशा के कारण वो भूल गया था। अब आप समझ गए, अब यहां पर भी ऐसे ही है कि दशम तो हम सब हैं, आत्मा तो हम सब हैं, पीत्वा मोह मदिरा उन्मत्त भूतम जगत, माया मोह ममता अज्ञान की नशा पान कर ये सारी दुनिया के लोग उन्मत्त हो गए, उन्मत्त, और उन्मत्त होकर फिर अपने आप को ही भूल गए, हम आत्मा हैं ये भूल ही गए। लेकिन कुछ ऐसे साधक भूले पड़े, और वो गुरु के पास, ये किसान जो है ना गुरु है, किसान जो है गुरु है, और गुरु के पास गए, गुरु मिले, और उस समय गुरु ज्ञान का उपदेश नहीं करता है, जाओ गंगा स्नान, बोले बेटा जाओ तीर्थ यात्रा करके आओ। मालूम है इसको तत्व, तो महाराज जी का आज का, अभी महाराज जी क्या बोल रहे थे, बहुत सुंदर प्रवचन, अभी लास्ट में 2 मिनट हम सुने, महाराज जी बोले आदमी सोचता है कि चलो व्यापार अपना पूरा हो गया, फायदा भी हो गया है, सब कुछ हो गया, 2 मिनट बाकी हैं अपने पास, चलो प्रेम पूरी चलते हैं और थोड़ा आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं बोले 5 मिनट का समय है अभी, फिर हम जाएंगे ऑफिस, लेकिन 5 मिनट में चलो थोड़ा सा आत्मज्ञान प्राप्त कर लें। लेकिन इससे नहीं होने वाला है, इसीलिए गुरु बोलता जाओ बेटा जाओ चारों धाम की यात्रा करके आओ। मालूम है ना कि गंगा स्नान करने से थोड़ा मोह माया ममता घर की आसक्ति कम हो जाती है, तीर्थों में जाके रहने से, तीर्थों में जाके रहने से ना वो घर का जो वही झाड़ू, वही आंगन और वही पेड़ पौधे, वही घर के लोग, और उसके अंदर इतना अटैच हो जाता है आदमी, उसे वैराग्य नहीं हो पाता। इसलिए घर से वैराग्य के लिए थोड़ी नशा कम हो जाए, मोह माया ममता आसक्ति की नशा कम करने के लिए महात्मा बोलते जाओ तीर्थाटन करने के लिए, करो दान दान करो दान। क्यों? दान करने से पैसे से आसक्ति कम हो जाए। आप जिसका दान करते हो ना उसकी आसक्ति कम होनी चाहिए, और नहीं हो तो दान ही नहीं करेगा दान ही नहीं करेगा भैया, छोड़ना है छोड़ना है। और उसके प्रति गहरा अटैचमेंट होना तो आप छोड़ ही नहीं पाओगे। जब गुरु आपको ये चीजें बताता है, दान करो, जप करो, ध्यान करो, श्रवण करो, तीर्थाटन करो, तो समझना कि ये हमारी गहरी जो आसक्ति की जो नशा है वो थोड़ा उतरेगी। और उसके बाद फिर उपदेश करेंगे तत्वमसी दशमस्त्वमसी, और वो जो उपदेश आप ग्रहण करेंगे अपने आप को ही अपना बोध होगा। उस समय वो जैसे दशवां दशवें के सामने प्रकट हो जाता है, वैसे फिर अपनी आत्माएं हमारे सामने प्रकट हो जाती, माने हमारे और आत्मा के बीच में जो बीच में भ्रम है, भ्रम भ्रम भ्रम, वो भ्रम टूट जाता है और आत्मबोध हो जाता है। स्वयं को ही बोध हो जाता है कि मैं आत्मा हूं। तस्य एष आत्मा विविरिणुते तनु स्वाम, अपनी तनु अपना स्वरूप आत्मा प्रकट कर देता है। इसको आत्मकृपा के रूप में भी बोला है, आत्मकृपा है, अपने ऊपर अपनी कृपा हो जाती है, तब आत्मज्ञान होता है। आपके अब दो श्लोक बाकी हैं, हम कल करेंगे, तो ये इस समय ये पूरा प्रकरण हो जाए। चलिए थोड़ा सा जप कर लेते हैं, एक दिन बाकी है, कल का ही है ना, कल का 31 तारीख। ओम ह्रीम नमः शिवाय, ओम ह्रीम नमः शिवाय, ओम ह्रीम नमः शिवाय, ॐ ह्रीं 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 नमः शिवाय,
ॐ ह्रीं नमः शिवाय,
ॐ ह्रीं नमः शिवाय,
ॐ ह्रीं नमः शिवाय,
ॐ ह्रीं नमः शिवाय,
ॐ ह्रीं नमः शिवाय,
ॐ ह्रीं नमः शिवाय, ॐ ह्रीं नमः शिवाय,
ॐ ह्रीं नमः शिवाय,
ॐ ह्रीं नमः शिवाय,
ॐ ह्रीं नमः शिवाय,
ॐ ह्रीं नमः शिवाय,
ॐ ह्रीं नमः शिवाय,
ॐ ह्रीं नमः शिवाय,
ॐ ह्रीं नमः शिवाय,
ॐ ह्रीं नमः शिवाय,
ॐ ह्रीं नमः शिवाय,
ॐ ह्रीं नमः शिवाय,
ॐ ह्रीं नमः शिवाय,
ॐ ह्रीं नमः शिवाय,
ॐ ह्रीं नमः शिवाय,
ॐ ह्रीं नमः शिवाय,
ॐ ह्रीं नमः शिवाय,
ॐ ह्रीं नमः शिवाय,
ॐ ह्रीं नमः शिवाय,
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।